नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। एस्केप टनल को समानांतर सड़कों के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। चंपावत जिले में नशीली और कोडीन युक्त दवाओं के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान जारी। लोहाघाट और बाराकोट में अनियमितता पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोर सीज। और पिथौरागढ़ में यक्षवती नदी के तट पर नदी महोत्सव का आयोजन। लोगों ने नदी के संरक्षण और संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं योशिता पांडे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 में गठित टास्क फोर्स के लिए अलग से ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में राज्य मुख्यालय में पहली बार 22 पदों का सृजन किया गया है।
टास्क फोर्स ANTF जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की, उनके माध्यम से ही इस ANTF में काम किया जाएगा। तो ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं।
राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI के तहत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों और उच्चतर पदों की सेवा शर्तों के निर्धारण के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस क्रम में उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली 2026 को प्रख्यापित किया गया है, जिसके तहत 94 पद होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की कार्यान्वयन अवधि को आगामी 31 मार्च तक विस्तारित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं में सुरंग के साथ बनने वाले एस्केप टनल को समानांतर सड़कों के रूप में विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में बनी एस्केप टनल का भविष्य में किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन के विस्तार की संभावना पर भी कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना पर भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण कार्य से अधिकांश क्षेत्र और जनता लाभान्वित हो सके, इसके लिए अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्र को भी जोड़ने की संभावना पर कार्य किया जाए। उन्होंने कर्णप्रयाग परियोजना के तहत प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के लिए एकीकृत योजना बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे इन रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थानीय लोगों के लिए बाजार विकसित हो सके। श्री धामी ने सभी निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों में स्वयं सहायता समूह और राज्य के स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए भी विशेष व्यवस्था करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में अभी से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें होम स्टे और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
राजधानी देहरादून में तिब्बती मार्केट के पास आज एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल व्यक्ति को दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। वही हत्या में संलिप्त स्कूटी सवार दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। साथ ही पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
चंपावत जिले में नशीली और कोडीनयुक्त दवाओं के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले भर में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने बताया कि अभियान के तहत लोहाघाट और बाराकोट में अनियमितता पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोरों को सीज किया गया, साथ ही थोक व खुदरा औषधि प्रतिष्ठानों को बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी दवाओं की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए।
हमने लोहाघाट में 7 मेडिकल स्टोर देखे थे, इसमें 1 मेडिकल स्टोर बंद निकला, 6 में चेकिंग की तो उसमें 1 में काफी कमी पाई गई, फार्मासिस्ट वहाँ पर थे नहीं। दूसरा वहाँ फिजिशियन सैंपल जो मेडिसिन होती है जो की कंपनियां और MR को देते हैं कि प्रमोट करने के लिए, 1-2 सैंपल होते हैं लेकिन काफी संख्या में फिजिशियन सैंपल भी मिले थे। दूसरा फिर हम बाराकोट गए तो एक को चेक किया तो उसमें क्योंकि वो मेडिकल स्टोर था लेकिन उसमें जन औषधि की दवाई रखी हुई थी क्योंकि वहाँ नहीं होनी चाहिए, जन औषधि केंद्र अलग ही होते हैं, इनका लाइसेंस अलग ही होता है। दूसरा वहाँ पर बेड मिला था जिसमें लग रहा था कि यहाँ पर ये ट्रिपी लगाते हैं, भी करते हैं, सिरिंज भी थी, तो इन दोनों मेडिकल स्टोर को हम लोगों ने सील किया है और इनसे सारे कागजात मांगे और जैसा भी आगे होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।
पिथौरागढ़ में आज यक्षवती नदी के तट पर नदी महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने यक्षवती नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि यक्षवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत आगामी समय में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
यक्षवती नदी में आज जो हमारा एक कार्यक्रम है नदी महोत्सव, उसके अंतर्गत फंक्शन किया गया था, जो नदी के पुनर्जीवन के संबंध में एक पूरी रूपरेखा बनाई गई है, तो उसी के दृष्टिगत वहां पर जाल खाल बनाने का, पॉन्ड बनाने का और वृक्षारोपण बनाने का जो वृहत कार्यक्रम है फ्यूचर में आयोजित किया जाएगा। तो जनपद के अंतर्गत हम लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी नदियां हैं, जाल खाल के दे रहे हैं, उनका पुनर्जीवन किया जाए और जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं उसको भी किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, तो इस दिशा में भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
महोत्सव के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाटकों के माध्यम से जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा पर आ रहे शिव भक्त कांवड़ियों की सुविधा के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने आज चंडी चौक से थाना श्यामपुर तक स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कांवड़ पटरी मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग नजीबाबाद मार्ग पर यातायात, साफ सफाई, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि शारदीय कांवड़ यात्रा और आगामी कुंभ मेले को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से निरीक्षण किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शारदीय कांवड़ यात्रा पर आए शिव भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत किया। हरिद्वार जिले में बिजली चोरी और बकाया बिल धारकों के खिलाफ ऊर्जा निगम ने आज 4 गांवों में एक साथ छापेमारी। इस दौरान 66 घरों में अवैध रूप से बिजली का उपयोग पकड़ा गया। अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने निहेंदपुर, सुठारी, सुल्तानपुर, टीकमपुर और जसोदपुर गांवों में अभियान चलाया। जांच में कई घरों में मीटर से पहले केबल काटकर सीधे लाइन जोड़ने की स्थिति पाई गई। कुछ उपभोक्ता अपने कनेक्शन कट जाने के बाद भी बिजली चोरी कर रहे थे। चारों गांवों में पकड़े गए उपभोक्ताओं पर करीब 25 लाख रुपए का बकाया है। सभी के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।